اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہید مرتضیٰ متحری کی کتاب حماسہ حسینی پر آخری شارٹ لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ گزشتہ تین لیکچر میں ہم نے واقعہ کربلا میں ہونے والی لفظی و معنوی تحریفات کے حوالے سے کچھ گفتگو کی اور اس کے عوامل بیان کیے۔ آج ہم یہ بیان کریں گے کہ اس میں ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے اس حوالے سے، اور ان تحریفات میں ذمہ دار کون ہے، کس کا گریبان جا کے پکڑا جائے اور کہا جائے کہ تم ذمہ دار ہو۔ دیکھیے، شہید مرتضیٰ متحری کہتے ہیں کہ اس حوالے سے عوام اور خواص دونوں مسئول ہیں، دونوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان تحریفات کا راستہ روکیں، اور اگر یہ تحریفات ہوئی ہیں تو ان میں قصوروار عوام بھی ہیں اور خواص اور علماء بھی ہیں۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس میں صرف عوام قصوروار ہیں، اور یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ اس میں صرف خواص اور علماء قصوروار ہیں۔ نہیں، اس میں عوام بھی قصوروار ہیں اور علماء بھی قصوروار ہیں، خواص بھی قصوروار ہیں۔ اس میں مجلس سننے والے بھی قصوروار ہیں جہاں تحریفات ہوئی ہیں، اور وہ خطیب اور بیان کرنے والا بھی قصوروار ہے، اور بانیان بھی قصوروار ہیں اس میں تحریفات میں، اور ذمہ داری بھی تینوں کی بنتی ہے کہ اس کا راستہ روکا جائے۔ دیکھیے، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو سمجھنے کے لیے انسان کا پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو سمجھنے کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے۔ کامن سینس کی باتیں ہیں، ہر فرد سمجھ سکتا ہے۔ عوام ذمہ دار ہے کیونکہ کربلا کی بہت ساری چیزیں ہم نے خود دیکھا ہے، آپ اس کے شاہد ہیں کہ عوام بھی کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ فلاں ذاکر تو بہت جھوٹ بولتا ہے، فلاں خطیب، فلاں مولوی صاحب تو بہت جھوٹ بولتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں واقعات کربلا کے حوالے سے، مبالغہ کرتے ہیں، یا امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو توڑا موڑا جائے تو یوں نہیں ہے کہ عوام اس بات کو نہ سمجھ سکے۔ عوام اس بات کو سمجھ سکتی ہے، لہذا اگر تحریفات ہوئی ہیں، خطیبوں کی جانب سے ہوئی ہیں، مولاناؤں کی جانب سے ہوئی ہیں، ذاکروں کی جانب سے ہوئی ہیں، تو جہاں پہ ان خطیبوں کا قصور ہے، ان رائٹرز کا قصور ہے، وہاں پہ عوام کا بھی قصور ہے کہ کیوں راستہ نہیں روکا ایسے لوگوں کا۔ دیکھیے، اس میں بانیان مجلس کا بھی قصور ہے۔ بانیان مجلس ایسے افراد کو کیوں بلائیں کہ جو واقعات کربلا کو صحیح طرح سے ہمارے تک نہ پہنچائیں، جو حق کے بجائے باطل ہمیں بتائیں۔ لہذا بانیان مجلس کا بھی اس میں قصور بنتا ہے ان تحریفات کے حوالے سے، اور ذمہ داری بھی، عوام کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان تحریفات کا مقابلہ کرے، بانیان مجلس کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان تحریفات کا مقابلہ کرے، اور یہاں علماء بھی ذمہ دار ہیں۔ دیکھیے، علماء ایسے علماء کے جو فاجر ہوں، در حقیقت دین کے لیے ایک آفت ہیں۔ بعض چیزیں ہوتی ہیں، دیکھیے دو طرح کی بیماریاں، ایک جسمانی بیماری ہیں، جسمانی عیوب ہیں، ایک روحانی عیوب ہے۔ جو دین سے ریلیٹڈ عیوب ہیں، بہت سارے جسمانی عیوب نہیں ہیں بلکہ روحانی عیوب ہیں۔ جس میں روحانی عیب ہوتا ہے، معنوی عیب ہوتا ہے، اس کی مشکل یہ ہے کہ وہ سمجھ نہیں پاتا کہ میرے اندر یہ معنوی عیب ہے۔ علماء جو کہ دین شناس ہوتے ہیں، وہ سمجھ سکتے ہیں کہ فلاں شخص کے اندر یہ عیب ہے، یہ معنوی عیب پایا جا سکتا ہے۔ ان کا فرض یہ بنتا ہے کہ وہ اس عیب کو دور کریں، اس بندے کو متوجہ کریں اس عیب کی جانب، اس کا علاج کریں، ایک طبیب بنے۔ اب عوام میں اگر کچھ عیب پائے جاتے ہیں اور علماء ان عیوب کو سمجھتے ہیں، यहाँ हमारे यहाँ आवाम में एक ऐप पाया जाता है, बानियों में एक ऐप पाया जाता है, और वो ऐप क्या है बानियों में ख़ास करके, कि हम अगर बेउनवान बानी ये मजलिस हों तो हम ये चाहते हैं कि हमारे मजलिस में ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, कम लोग ना आए, चाहे ये आपस में मुकाबला बाजी के लिए हो या हमारे दिल की अब खुशी इसी में होती हो, तो हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए। अब उसकी वजह से एक ऐसा खतीब कि जो हक बयान करता हो और उसको आवाम पसंद ना करती हो हक बयान करने की वजह से, या जो ज़्यादा शोला बयान ना हो, हकीकत बयान करता हो लेकिन ज़्यादा शोला बयान ना हो, उसके मुकाबले में एक ऐसा खतीब कि जो शोला बयान है, आवाम पसंद है, आवाम उसको पसंद करती है, तो बानी क्या करेंगे, उसको बुलाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए। तो यहाँ पे बानी कसूरवार है, ऐसे फ़र्द को बुलाने के हवाले से कसूरवार है, ज़िम्मेदार है। क़यामत के दिन जाके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, जनाब ज़ाहरा सलामुल्लाह अलैहा को, पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अमीरुल मोमिनीन को क्या मुंह दिखाएंगे? ये एक ऐब है। अब उलमा इस ऐब को समझते हैं, जब इस ऐब को समझते हैं तो अब दो रास्ते हैं उलमा के सामने, या तो ये कि इस ऐप की जाके इस्लाह करें, आवाम को और बानियों को बताया जाए कि नहीं, वो मजलिस जिसमें ज़्यादा अफराद हो वो मियार नहीं है उस मजलिस के सही होने का, मजलिस के कबूल होने का ये मियार नहीं है कि उसमें अफराद ज़्यादा है, मजलिस के कबूल होने का मियार ये है कि उसमें हक बयान हो, उसमें वाकई करबला सही तरह से बयान हो, उसमें इमाम के मकसद को सही तरह से बयान किया जाए, जैसे वाक़यात रोनुमा हुए हैं वैसे बयान किया जाए, जो उनका मकसद और हदफ था वैसे बयान किया जाए। एक ये तरीका है, ये जिम्मेदारी है उलमा की। दूसरा रास्ता उनके पास है कि नहीं, अब अगर हक बयान करेंगे तो लोग कम आएंगे, लोग कम आएंगे तो बानी हमें आइंदा बुलाएंगे नहीं, अब नहीं बुलाएंगे तो बानियों की इस कमज़ोरी से, आवाम की इस कमज़ोरी से इस्तफादा किया जाए, और हम भी जो है वो इस हवाले से या तो खामोश रहें, या हम भी जो है ना वो तहरीफात करना शुरू कर दें, हम भी झूठ बोलें, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? यहाँ पे उलमा भी कसूरवार होंगे। लिहाजा इस तरह के कसूर बहुत सारे खतीबों की तरफ से, जाकरों की तरफ से, मौलानाओं की तरफ से भी रहे हैं। दूसरी एक और कमज़ोरी है आवाम की, वो ये कि समझते हैं कि वो मजलिस कामयाब है, वो मजलिस इस्तलाहन वो मजलिस मजलिस लग गई है कि जिसमें ज़्यादा वाह वाह हुई हो, जिसमें ज़्यादा गिरिया हुआ हो, जिसमें लोग कम रोए हों, जिसमें कम वाह वाह हुई हो, वो हमारे नज़दीक मजलिस जो है वो लगी नहीं है, कामयाब मजलिस नहीं है, बानियों के नज़दीक भी, आवाम के नज़दीक भी। यहाँ आवाम को कसूरवार है कि अपनी इस अप्रोच को बदले कि नहीं, मजलिस की कामयाबी इस पर है कि मतालिब कैसे बयान किए गए हैं, सही मतालब बयान किए गए कामयाब है, गलत मतालब बयान किए गए हदफ से हमें दूर किया गया तो ये नाकाम मजलिस है। अवाम यहाँ उलमा के पास भी दो रास्ते हैं, या तो इसकी इसलाह करें सोच की, जिसके मुकाबले में सख्तियाँ बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, या नहीं, इस कमज़ोरी का इस्तफादा करें और इस तरह से मतालब को बयान करें कि वाह वाह ज़्यादा हो, तहरीफ करके गिरिया ज़्यादा करवा लें, लेकिन मुकाबला ना करें इसका। तो यहाँ पे उलमा भी कसूरवार है, हत्ता अगर तहरीफ नहीं भी करते, तहरीफ का इस तरह से मुकाबला नहीं करते तो कसूरवार है। बस यहाँ कसूर भी अगर कहीं तहरीफ हुई है तो उलमा का भी है, आवाम के भी है, और ख़वास की भी है। ख़वास की भी गलती है, कसूर है, आवाम का भी कसूर है। लिहाजा उलमा भी अगर कहीं पे तहरीफ हुई है तो वो भी ज़िम्मेदार है, आवाम भी ज़िम्मेदार है, बानी भी ज़िम्मेदार है, और अगर तहरीफ हो रही है तो उसके रोकने के हवाले से भी तीनों पे वाजिब है कि उसको रोकें। दोस्तान, यहाँ पे ये तहरीफात का मौजू ख़त्म हुआ, और इसी के साथ ये सिलसिला भी शॉर्ट लेक्चर्स का हमासे हुसैनी पर ख़त्म हो गया। एक दफ़ा दोबारा आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे कि ये जो तहरीफात का चैप्टर है हमासा हुसैनी किताब में, इस पर गौर कीजिए, आवाम अपना मुतालिया बढ़ा के, आप लोग अपना मुतालिया बढ़ाइए, वाक़िया करबला के हवाले से। वाक़िया करबला हमारे लिए इस कदर अहम है कि हम जितना उसके बारे में पढ़ें वो कम है, हमारी ज़िंदगियों पे उसका असर है। हमारे लिए ज़रूरी है आप किताब हमासे हुसैनी भी पढ़ें, बाकी जो किताबें वाक़िया करबला के हवाले से हैं उनको भी पढ़ें, मुस्तनद किताबों से, हमारे पास मुस्तनद किताबें बहुत सारी हैं, मुस्तनद किताबों की तरफ हम लोग रुजू करें और ये जानने की कोशिश करें कि हक़ व हकीकत क्या है इस वाक़े के हवाले से, ताकि कोई हमारी ना जानने की वजह से सुइस्तफादा करके गलत बयानी का मुर्तकिब ना हो और इस वाक़े में तहरीफ का मुर्तकिब ना हो। उम्मीद है कि ये लेक्चर्स मुफीद रहे हों। यह है कि बहुत ज़्यादा इसके चांसेस है कि हमारे बयान में बहुत सारी कोताहियाँ और कमियाँ रह गई हों, सब चीज़ें हम वक्त की महदूदियत की वजह से बयान भी नहीं कर सके, लिहाजा आपसे ये तवक्को है कि आप लाजमी तौर पे किताब का मुताला कीजिए, बहुत ही अहम किताब है। और शहीद मुर्तज़ा मुतहरी के, जिनको इमाम इस्लाम के लिए एक सरमाया समझते थे इमाम खुमैनी, और अपनी ज़िंदगी का सरमाया समझते थे, और जिनके बारे में ये फरमाते हैं कि उनके जितने आसार हैं वो बिला इस्तिस्ना काबिल इस्तफादा है, तो इंशाल्लाह हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि इस शहीद के आसार के मुताले की हमें तौफीक दे, वाक़िया करबला को सही तरह से समझने की हमारी तौफीक दे, और अगर जो वाक़िया करबला में तहरीफ़ात हुई हैं उसका मुकाबला करने की हमें तौफीक दे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।